ஹரி கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சாப்டர் 10 வர்ஸ் நம்பர் 7. இஸ் ஆத்யாத்மிக் ஜான் மே பிரவேஷ் கரனே சே பஹலே குரு ஆர் கௌரங்க சே கிருபா கி யாச்சனா கர்த்தே ஹுவே மங்கல ஆச்சரண் கரேங்கே தாக்கி ஹம் ஜோ அத்யயன் கர் ரஹே ஹேன் உஸ்கா பூரா பூரா லாப் பிராப்த ஹோ சகே ஜோ கி ஹே கிருஷ்ண பிரேம் கி பிராப்தி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஜ்ஞானஞ்சன ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹயம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகண ரகுநாதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதம் சகண லலிதா ஸ்ரீ விசாகான்விதாஸ்ய. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபீஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானுசூதி தேவி பிரணமாமி ஹரி ப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதீதனாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நம. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்தவிந்த. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா மாத கீ ஜெய ஹோ. அத்யாய 10 ஸ்லோக் சங்கியா 7. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கே முகாரவிந்த் சே நிக்லே ஹுவே இன் அத்யந்த ஹி பவித்ர சப்தோ கோ மேரே சாத் சாத் உச்சாரண் கர்னே கா பிரயாஸ் கீஜியே. பகவான் கேத்தே ஹேன் ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மாமயோ வேத்தி தத்வத சோ விகல்பேன யோகேன யுஜ்யதி நாத்ர சம்சயஹ. ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மாமயோ வேத்தி தத்வத சோ விகல்பேன யோகேன யுஜ்யதி நாத்ர சம்சயஹ. ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மாமயோ வேத்தி தத்வத சோ விகல்பேன யோகேன யுஜ்யதி நாத்ர சம்சயஹ. சப்தார்த்த: ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച, ഏതാമന ഇസ് സാരെ, വിഭൂതിം യനി ഐശ്വര്യക്കോ, യോഗം യനി യോഗക്കോ ച ഭി, മമ യനി മേരേ, യോ വേത്തി തത്വതഃ, യോ യനി ജോ കോയി വേത്തി യനി ജാനത ഹേ തത്വതഃ സഹി സഹി തരീകേ സേ, സ അവികൽപേന, സ ജോ ജാനത ഹേ വോ അവികൽപേന യനി ഇസ്മേ കോയി വികൽപ് നഹീ ഹേ, കോയി ശക് നഹീ ഹേ, നിശ്ചിത രൂപ സേ യോഗേന യനി ഭക്തി സേ യുജ്യതേ ലഗാ രഹത ഹേ, न अत्र संशय, न मतलब कभी भी नहीं, अत्र यानी इसमें या यहाँ पर, संशय यानी संदेह। अनुवाद, जो मेरी इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति, यानी जो लक्ष्य है ना, वो हमें क्या है, भगवत धाम जो भगवत का, जो भगवान का जो ज्ञान है ना, उसी के द्वारा हमारा जो अंदर भगवान का प्रेम है ना, वो उत्पन्न होता है। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि हमें भगवान के विषय में सब कुछ पता होना चाहिए। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सामान्यता लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार से महान है। यहाँ पर इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम तथा अन्य ऐसे ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरतें, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं, पंगुं लंघयति किरं, यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। अत्यंत सुंदर भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों, अपने ऐश्वर्य के विषय में बता रहे हैं। इस पहले भगवान ने कहा कि मैं समस्त वस्तु, जो क्वालिटीज हैं, जो गुण हैं, उनका स्रोत हूँ। और कल हमें भगवान ने बताया कि जो प्रजापति हैं, जिनसे ये भौतिक जगत उत्पन्न हुआ है, जितने भी जीव हैं जिन जिन ब्रह्मांडों में, वो उनका स्रोत भी मैं हूँ। और आज भगवान कहते हैं एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अर्जुन, क्योंकि जो मेरी इन विभूतियों को इन योग में योग से पूर्ण जो पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है, जिसको ये पूरा श्रद्धा पर मेरे वचनों पर हो जाती है और मेरे ऐश्वर्यों को, मेरे वैभव को, मेरी क्वालिटीज को जो जान लेता है, सो अविकल्पेन योगेन, उसके पास फिर और कोई चारा नहीं रह जाता, उसके पास मेरी शरण में आने का अलावा, मुझसे प्रेम करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता है। युज्यते, वो निश्चित रूप से मेरी भक्ति करेगा, क्योंकि जब वो जान जाएगा कि मेरी महानता के विषय में, मेरे विषय में, मेरी करुणा के विषय में, मेरे प्रेम के विषय में, मेरे जो भक्तों के प्रति जो मेरा स्नेह है उसके विषय में, और जीव मात्र के प्रति जो मेरी करुणा है उसके विषय में यदि कोई जान लेगा, फिर वो अवश्य मेरी भक्ति, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होगा। युज्यते नात्र संशया, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि आप किसी को भगवान के विषय में श्रवण कराओ, भगवान के विषय में बताओ और वो भगवान से प्रेम करना शुरू न कर ले। अगर वो श्रद्धा से सुन रहा है, अगर वो ऐसा नहीं है, देखो श्रवण में दो तरह से होता है, एक तो हम सुनते हैं और दूसरा जो है हम सुन नहीं रहे होते हैं, बस ऐसे ही। सुनने का मतलब होता है वो सुनो और करो। जैसे एक व्यक्ति है, यहाँ पर हम बैठे हो और उसको हम कहें सुनो पानी लेके आओ, और वो वहीं पर बैठा रहे, भले उसने सुना भी हो तो भी हम उसको क्या कहेंगे, तुमने सुना नहीं क्या, अभी मैंने कहा पानी लेके आओ, फिर भी वो वहीं पर बैठा हो तो भले उसने सुना हो, लेकिन यदि वो कर नहीं रहा है तो इसका मतलब है उसने सुना नहीं, है ना। तो यदि कोई ध्यान से इन शब्दों को श्रवण करता है, जो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में जो उपदेश दिया है और भागवतम में वेद व्यास जी ने जो भगवान की लीलाओं को एकत्रित करके संकलन करके जो श्रीमद् भागवतम का निर्माण किया है, इन दो शास्त्रों को यदि कोई सुन लेता है तो वो भगवान की संपूर्ण विभूतियों को, भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की उदारता को, भगवान के प्रेम को जान लेता है, और जो जान लेता है तो भगवान कहते हैं सो अविकल्पेन योगिना, उसके पास और कोई चारा नहीं रह जाता, वो अवश्य मेरी भक्ति करेगा। तो वास्तव में भक्तों, यहाँ पर भगवान भगवत कथा श्रवण करने के महत्व को बता रहे हैं कि अगर आप भगवान के विषय में श्रवण करते हो, आपको पता चल जाती है भगवान की सारी करुणा, कृपा, ऐश्वर्य, तो फिर आप अवश्य भगवान की भक्ति करोगे। वास्तव में जीव का वास्तविक धर्म है भगवान की भक्ति करना, लेकिन वो तभी संभव है जब हम भगवान के विषय में श्रवण करें। जैसे प्रहलाद महाराज जब नवधा भक्ति के विषय में बताते हैं तो सबसे पहले कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यानी सबसे पहले क्या करना है, श्रवण, और वो भी कैसे, ध्यान से। यदि ध्यान से श्रवण करेंगे तो समझो कृष्ण की भक्ति करना अनिवार्य है। मतलब जिसने श्रवण किया उसके लिए संभव ही नहीं है कि वो जप ना करे, उसके लिए संभव ही नहीं है कि वो कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं हो। तो यदि हम भगवान के विषय में श्रवण करेंगे तो संभव ही नहीं है कि हम कृष्ण को छोड़कर कहीं और अपने मन को लगाएं, क्योंकि जब हम भगवान के विषय में हृदय से श्रद्धा से श्रवण करते हैं तो फिर हमारे कर्णों से हम भगवान के विषय में श्रवण कर रहे होते हैं, और वो जो कथा है भगवान की वो हमारे दिल में उतरती है और हृदय के अंदर जानते हो जाके क्या करती है। ये भगवान की कथा और भौतिक स्टोरी में बहुत फर्क है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जिस तरह से हम आज इस भौतिक जगत में किसी हीरो के कारनामों को सुनते हैं, उसी तरह से कृष्ण के कारनामों में भी उनमें कोई अंतर नहीं, उसमें बहुत फर्क है। शास्त्र प्रमाण है, भागवतम में लिखा है 1.2.17 पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 17 में वेद व्यास बताते हैं, श्रावताम सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्थो य भद्राणी विधुनोति सुहृदसाम। श्रवताम स्वकथा कृष्ण, जो भगवान की कथाओं को श्रवण करता है, जब कोई ध्यान से भगवान की कथाओं को श्रवण करता है तो फिर क्या होता है, पुण्य श्रवण कीर्तन, उस श्रवण और कीर्तन का क्या लाभ प्राप्त होता है, हृदयंतस्थो य भद्राणी, हृदय के अंदर जो अभद्र है, जो पदार्थ का भोग भोगने की इच्छा है ना, इस जीवन में वास्तव में इस भौतिक जगत में अगर हृदय के अंदर कोई अभद्र है, कोई गलती है, कोई अपराध है ना, तो वो ये है कि मनुष्य इस संसार में भोग भोगने की इच्छा करता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे अधिक से अधिक भोग भोगने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो, तो ये मनुष्य जीवन के हृदय का सबसे बड़ा अपराध है। और जैसे भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो जाती है ना, फिर हृदयंतस्थो य भद्राणी, हृदय के अंदर जो अभद्र हैं उनको क्या करती है, विधनोति सुहृदसाम। विधनोति का मतलब है कि वो स्वच्छ करता है, धोते हैं ना जिसे, तो हृदय की गंदगी को धोती है कथा जाकर। जब कृष्ण की कथा कोई श्रवण करता है ना, तो हृदय के अंदर जो गंदगी है वो कथा धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम भगवान के विषय में श्रवण करते जाते हैं, वैसे वैसे हृदय पवित्र होता जाता है। इसलिए श्रवण करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शास्त्र में 1.2.8 श्रीमद् भागवतम में वेद व्यासी बहुत बड़ी बात कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वे कहते हैं, कथा श्रवण नहीं जो करते, जो लोग कथा श्रवण में रुचि नहीं रखते, जो भगवान के विषय में श्रवण करना चाहते नहीं है, उनके विषय में कहते हैं, धर्म स्वनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया। जिन लोगों ने धर्म सुनिष्ठित पुंसा, उन पुंसाम का मतलब होता है मनुष्य, उन मनुष्यों ने जिन्होंने अपने सारे धर्मों को बहुत ही सुनिश्चित तरीके से, सुनिश्चित मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न किया है, वो जिस भी अवस्था में है, चाहे माता है, चाहे पिता है, पुत्र है या पत्नी है, जो भी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ग्रस्त, संन्यास, अपने अपने धर्मों को बहुत ही सुनिष्ठता तरीके से उसने कर लिया, और वो सोचे कि बस मैं अपने कर्तव्य तो बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ, फिर मेरे मन में भगवान की कथा को श्रवण करने की इच्छा नहीं है, तो यहाँ भागवत कहती है, धर्म सुनिष्ठता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया। लेकिन यदि उसके हृदय में भगवान की कथा को श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, नोत्पादयेत यदि रतिम, यदि भगवान की कथाओं से प्रेम उत्पन्न नहीं होता, यदि भगवान की कथाओं को श्रवण करने का हृदय के अंदर तीव्र लालसा उत्पन्न नहीं होती है, तो श्रम एव ही केवलम, उसने जो कुछ किया अपने जीवन में, मनुष्य जीवन लेकर इस भौतिक जगत में आए और केवल गधों की तरह श्रम किया। श्रम का मतलब समझते हैं आप, श्रम का मतलब होता है वो कार्य करता रहा गधे की तरह सारे जीवन, मगर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जैसे कोलू का बेल होता है ना, तो उसके अंदर कुछ न कुछ डाला जाता है और वो बेल घूमता है घूमता है घूमता है, सेंटर में कुछ न कुछ रखा जाता है और उसका तेल निकल रहा होता है। लेकिन जब कुछ नहीं डाला जाता ना सेंटर में, फिर वो अगर वो बेल जो है वो पूरी जिंदगी भी घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे और उसका कुछ भी निकलने वाला नहीं, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, वो खाली निरी व्यर्थ का श्रम कर रहा है। उसी तरह मनुष्य के जीवन के अगर धर्म है, अगर वो धर्म कर रहा है, कोई भी अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा है, अगर वो ठीक
ठीक से कर रहा है तो इसका मतलब है भगवान की कथा में रुचि होनी चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतने सारे कार्य हैं, इतने सारे कर्तव्य हैं, इतने सारा मुझे काम करना पड़ता है, इतना बिजी है कि भगवान की कथा के लिए समय नहीं है, तो वो केवल गधों की तरह व्यर्थ मेहनत कर रहे हैं। अगर भगवान की कथा के लिए, श्रवण करने के लिए समय नहीं है, तो समझो उसने अपने मनुष्य जन्म का सत्यानाश कर दिया। ये मनुष्य जन्म ये इसलिए नहीं मिला है कि हम जानवरों की तरह केवल कार्य करते रहें, बिजी 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 रहें, भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए कोई समय ना निकाले। इसलिए अगर कोई किसान अपने खेत में बीज डालता है और समय पर यदि फसल नहीं उगती है तो उसे दुख होगा ना कि मैंने कितनी मेहनत से पूरा साल इस खेत के ऊपर काम किया, इतनी मेहनत की, बेल से हल चलाया, लेकिन कुछ उपज नहीं हुई, तो उसे रोना चाहिए ना, दुखी होना चाहिए ना। इसी तरह से यदि हम इस भौतिक जगत में आ गए हैं और अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं और फिर भी भगवान की कथा सुनने के लिए हृदय के अंदर रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, तो दुखी होना चाहिए, रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, भगवान हमने क्या ऐसा अपराध किया कि हमें आपकी कथा को श्रवण करने का दिल ही नहीं करता। वास्तव में हमारे जीवन की ये सार्थकता है, हमारे धर्म को पालन करने के बाद यह फल मिलना चाहिए कि भगवान के अंदर, भगवान के नाम के अंदर, भगवान की कथा के अंदर प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने कहा कि जो मेरे विषय में श्रवण करता है, जो मेरे विषय में जान लेता है, वही मेरी भक्ति करता है। ये भगवान ने कहा, सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय, वही केवल मेरी भक्ति कर सकता है जो मेरे विषय में श्रवण करता है। आप श्रवण करना छोड़ दो, आप कुछ समय के बाद आपका जप रुक जाएगा और आपका हृदय के अंदर भगवान के लिए जो प्रेम है ना, वो भी समाप्त हो जाएगा। यह श्रवण जो है वो उस तरह है जैसे भक्ति का बीज जो है वो हृदय के अंदर बोया जाता है। बहुत जितने महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रम्यते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाई भक्ति लता बीज। ब्रह्मांडों में, अनेकानेक ब्रह्मांडों में करोड़ों करोड़ों जीव हैं और उनमें से कौन भाग्यवान, कोई एक ही भाग्यवान जीव होता है जिसे गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। अब देखिए भक्तों, अगर किसी को बीज प्राप्त हो जाता है ना, तो वह बीज बोने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक सॉफ्ट जमीन चाहिए, है ना। एक सॉफ्ट जमीन होगी, ये कंकड़, ये सीमेंट वाली, मार्बल वाली जो फर्श होगा उसके अंदर तो हम भक्ति का बीज नहीं बो सकते। उसके लिए हृदय विनम्र होना चाहिए। विनम्र का मतलब होता है हमारे हृदय में दूसरों के लिए ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, निंदा भाव नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट हृदय होना चाहिए। महाप्रभु तो कहते हैं कि घास के तिनके से भी अपने आप को विनम्र रखो, तृणादपि सुनी चेना, जो राह में पड़ा हुआ घास का तिनका है ना, उससे भी अपने आप को विनीत रखो। और तरोरपि सहष्णु न, वृक्ष की तरह खुद को सहष्णु बनाओ, सबको मान दो, अपने लिए मान की कोई उपेक्षा ना रखो, तभी आप भगवान के इस भक्ति के बीज को अच्छे तरीके से फलीभूत कर सकते हो। और श्रवण आदि शुद्ध जले करे रे संचन, ये जो श्रवण और कीर्तन जो है उसके द्वारा इस जो भक्ति लता का बीज जो हृदय के अंदर बोते हैं ना, उसका सिंचन होता है। जैसे अगर धरती में भी किसी बीज को हम बोते हैं तो उसको हमें पानी देना पड़ता है, सूर्य प्रकाश देना पड़ता है ना, उसी तरह हृदय के अंदर जो भक्ति लता का बीज है ना, इसको वृक्ष बनाने के लिए, इसके अंदर फूल खिलाने के लिए हमें श्रवण और कीर्तन के जल से इसको संचित करना पड़ता है। और जैसे जैसे हम भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, तो हम भगवान के ऐश्वर्य को, ठीक से समझ लेते हैं। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागति होने के अतिरिक्त और कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। जैसे जैसे हम भगवान के विषय में श्रवण करते रहते हैं तो नेचुरली स्वाभाविक हमारे हृदय के अंदर शरणागति का भाव उत्पन्न होता है कि जो भगवान इतने करुणामयी है, जो भगवान इतने दयामयी है, उनकी शरणागति लेनी। तो जैसे जैसे हम श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के भगवान जो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश दिया है और वेद व्यास जी ने, सुखदेव गोस्वामी ने जो श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाओं के विषय में बताया है, उनके अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, तो वो जब हम श्रवण करते हैं तो उससे हमें भगवान के विषय में सारे ऐश्वर्यों को हम समझ सकते हैं। वास्तव में भक्तों, भागवतम से बढ़कर और कोई ग्रंथ नहीं है, इसलिए श्रीमद् भागवतम को ग्रंथ राज कहा जाता है। इसी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। ये श्रीमद् भागवतम है वो अमलम है, स्पॉटलेस, उसके अंदर कोई मल नहीं है। वास्तव में भगवान के विषय में वास्तविक ज्ञान यदि कहीं से प्राप्त हो सकता है तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा वास्तविक ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें किसी भी तरीके से कैसे भी करके अपने जीवन शैली को, अपने समय को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि हमें श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। और जैसे जैसे हम भगवान के विषय में श्रवण करते जाते हैं, वैसे वैसे भगवान के प्रति हमारी प्रीति बढ़ जाती है। और जब हम भगवान के प्रति हमारी प्रीति विकसित होती है तो भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होती है। नाम में भगवान ने अपनी समस्त शक्तियां समर्पित कर दी हैं। भगवान चैतन्य कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। भगवान ने अपनी सारी शक्तियां भगवान के नाम में समर्पित कर दी हैं। नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वान नाम नामिनो। इसलिए गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इस भौतिक जगत में हरि नाम के प्रचार करने के लिए पधारे हैं। वो अपने हाथ उठाकर समस्त जीवों को कहते हैं कि आप केवल एक बार महामंत्र का उच्चारण करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बार महामंत्र उच्चारण करने से आपकी संपूर्ण विगत जन्मों के संपूर्ण अपराध नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे हम भगवान के पवित्र नाम को गाते हैं, जैसे जैसे भगवान के नाम की महिमा को हम श्रवण करते हैं, तो भगवान के नाम में अधिक रुचि उत्पन्न होती है। जैसे जैसे भगवान की महानता को, भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान के वैभव को जब जानने लगते हैं, भगवान के विषय में यदि पूर्णतया हम आश्वस्त होते जाते हैं, हृदय के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है और नाम में अधिक रुचि उत्पन्न होती है। रूप गोस्वामी बहुत ही सुंदर बात कहते हैं हरि नाम के प्रति। वे कहते हैं, पता नहीं ये कृष्ण नाम में कितना अमृत भरा है, समझ में नहीं आता कि कितना डिवाइन नेक्टर है इसके अंदर, कितना आध्यात्मिक अमृत है। जब मैं अपनी जीवा से इसको जप करता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक जीवा बहुत कम है, इससे मैं उस अमृत का संपूर्ण आनंद नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए मेरी करोड़ों जीवा होनी चाहिए। जब मैं इस पवित्र नाम को, भगवान की कथाओं को जब मैं कर्णों से श्रवण करता हूँ तो ये कथाएं इतनी मीठी लगती हैं, इतनी सुस्वादु हैं, स्वादु स्वादु पदे पदे, कि एक एक क्षण में उनका आस्वादन, उनका आनंद, उनका रस भरता जाता है और मुझे दो कान बहुत कम पड़ते हैं। ऐसा लगता है मेरे करोड़ों करोड़ों कान होने चाहिए जिससे मैं भगवान की कथाओं के इस अमृत को अधिक से अधिक लूट सकूं। और जैसे जैसे मैं अपने
जिह्वा से इस पवित्र नाम को जप करता हूँ, कर्णों से भगवान की कथाओं को श्रवण करता हूँ, तो ये हृदय के अंदर चले आते हैं। और जब ये हृदय के अंदर छा जाते हैं तो मन और इंद्रियों को चक्कर देते हैं, और मेरे पास शरणागति के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। भगवान ने कहा, जो मेरे ऐश्वर्य को समझ लेता है और उससे पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है, वे मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर हो जाता है। वास्तव में भक्तों, जीव का एकमात्र खजाना है भगवान के पवित्र नाम में प्रीति, भगवान के अंदर प्रीति, भगवान के शब्दों के अंदर प्रीति। जब हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते रहते हैं तो हृदय के अंदर भगवान के अंदर प्रीति उत्पन्न होना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम सदय कदुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिया उदय। कि ऐसे ही मत सोचो कि आपके हृदय में भगवान का प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिया, यदि आप शुद्ध हृदय से भगवान के पवित्र नाम को और भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को श्रवण करोगे, तो उसी से हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न होगा। और जब कृष्ण का प्रेम उत्पन्न हो जाता है ना, तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, हृदय आनंदित हो जाता है। वास्तव में जीव का यही सबसे बड़ा खजाना होता है कि हृदय के अंदर कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न हुए। यही वास्तविक लक्ष्य है, यही वास्तविक सिद्धि है, वरना फिर इतने सारे शास्त्रों को पढ़ने का कोई कारण ही नहीं है। भगवान तो यहाँ तक कह दिए, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। इतने सारे वेदों को पढ़ने के बाद यदि कोई लक्ष्य है तो वो मैं हूँ, मुझे प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। वास्तव में भक्तों, जिसको ये हरिनाम का खजाना मिल जाता है ना, उसके लिए संसार भर की दौलत जो है वो तुच्छ लगने लगती है। उसे और भौतिक जगत में किसी और वस्तु से प्रेम, किसी और वस्तु के प्रति आकर्षण रह नहीं जाता। वास्तव में हृदय की सबसे बड़ी गंदगी यही है कि भौतिक वस्तुओं में आकर्षण है। वो इसी कारण है क्योंकि कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं है, कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है। वरना तो भगवत गीता में भगवान ने कह दिया 2.59 में, रसवज्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जिससे वास्तविक खजाना प्राप्त हो जाता है, जिसे वास्तविक आनंद प्राप्त हो जाता है, जिसे वास्तविक कृष्ण रस प्राप्त हो जाता है, उसके लिए संसार के सारे रस फीके पड़ जाते हैं। वरना तो इस संसार में, क्योंकि हमें अभी भगवान के रस का आनंद आया नहीं है ना, इसीलिए लगता है कि धन इम्पोर्टेंट है, भौतिक जगत में सुविधाएं इम्पोर्टेंट है, भौतिक ऐश्वर्य इम्पोर्टेंट है, या ज्ञान इम्पोर्टेंट है। ये जब सब अभी महत्वपूर्ण लग रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वास्तविक कृष्ण प्रेम का आनंद प्राप्त नहीं किया है। देखिए भक्तों, ये कृष्ण जो है वो समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। संसार में जो ऐश्वर्य हमें अट्रैक्ट करते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्यस्य एव षडनाम भग इति गणा। इस भौतिक जगत में सुंदरता, ज्ञान, धन, शक्ति जो हमें आकर्षित कर रहे हैं, वो सब के सब कृष्ण के अंदर है। और कृष्ण का सारा पावर उसके नाम के अंदर है। केवल कृष्ण के नाम लेने से जीव समस्त उद्देश्यों को पूर्ति कर सकता है। जीव के सारे उद्देश्य केवल कृष्ण का नाम जप करने से, कृष्ण की कथाओं को श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कृष्ण समस्त आनंद के स्रोत हैं। संसार में जो कुछ भी आनंदमयी है, जो कुछ भी सौंदर्य है, जो कुछ भी ऐश्वर्य है, जो कुछ भी प्राप्त करने योग्य है, वो केवल कृष्ण है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। जैसे जैसे हम भगवान के पवित्र नाम की ओर आकर्षित होते तो आनंद वर्धन होता है। और एक एक कदम में ये भौतिक आनंद तो तुच्छ है। जैसे जैसे हमें मिलता जाता है वो वाली वस्तु से आनंद समाप्त हो जाता है। आज देखिए, आपके पास करोड़ों चीजें हैं, आपके माइंड में भी नहीं आता है कि वो वस्तु आपके पास है।
आप केवल उसी वस्तु के लिए तड़पते हो जो आपके पास नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कृष्ण का प्रेम हमें मिलता जाता है वही हमें आनंद देता जाता है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, केवल कृष्ण प्रेम चाहिए, इसके अतिरिक्त और कुछ आनंदित लगता नहीं है। जब कृष्ण प्रेम में जीव आगे बढ़ता है तो संसार की दौलत तुच्छ लगने लगती है। जैसे हमारे षट गोस्वामी, षट गोस्वामियों में अगर रूप सनातन गोस्वामी या रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में हम देखें तो बहुत धन था उनके पास। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ये तो राजा के बहुत बड़े मंत्री पद पर थे। आज हम देखें कि कितना जीव परिश्रम करता है मंत्री पद को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उन्होंने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आने के लिए वो अपने उस सारी बादशाहत को छोड़कर आ गए। नहीं चाहिए चैतन्य महाप्रभु, हमें आपकी शरणों में जगह चाहिए। यहाँ तक कि एक बार सनातन गोस्वामी यमुना में स्नान कर रहे थे, जब वो वृंदावन में गए थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भेजा था कि वृंदावन में जाइए और कृष्ण की लीला स्थलियों को खोज कीजिए, तो जब यमुना नदी से स्नान करके आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा पारसमणि पड़ी हुई थी। पारसमणि को जानते हैं आप? पारसमणि यदि किसी लोहे को भी स्पर्श हो जाती है ना तो वो सोना बन जाता है, सोना रियल 24 कैरेट गोल्ड। तो सनातन गोस्वामी ने देखा पारसमणि है, लेकिन क्योंकि वो तो अपने इतने सारे धन धान्य को छोड़कर आए थे, उनका क्या आकर्षण इस भौतिक सोने से, तो उन्होंने सोचा कि इसका मुझे तो इससे कोई काम नहीं है, ये पता नहीं क्यों किस लोभ को दिखाने के लिए, क्योंकि जानते थे सब कुछ भगवान ही करते हैं, तो पता नहीं किस लोभ को प्रकट करने के लिए भगवान ने इसको मेरे सामने भेजा है। बहरहाल उन्होंने क्या किया, पांव से थोड़ी मट्टी ऐसे की और उससे उस पारसमणि को छुपा दिया कि दिखे नहीं, मतलब उसको ढक दिया और आगे अपने काम से चले गए, अपनी कुटिया में बैठ के भजन करने लगे। उस समय तो उन्होंने पारसमणि का तिरस्कार कर दिया, लेकिन एक दूसरी जगह पर भौतिक जगत में इसी यहीं पर कोई शिवजी का बहुत महान भक्त था। शिवजी का बहुत तपस्या करने की बहुत तपस्या की और जब शिवजी ने उनको दर्शन दिया, शिवजी ने कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तब उस भक्त ने कहा प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे धन चाहिए। तब शिवजी ने कहा धन? हाँ, धन प्राप्त करने के लिए तुम ऐसा करो, वृंदावन जाओ, वहां पर एक सनातन गोस्वामी रहते हैं, उनका एड्रेस दिया, बोला उनसे जाकर कहना मुझे शिव जी ने भेजा है और आप मुझे पारसमणि दे दो, और जब वो आपको पारसमणि दे देंगे तो तुम्हें जितना भी धन चाहिएगा तो आप उससे प्राप्त कर सकते हो। वो भक्त बहुत प्रसन्न हुआ और वो सनातन गोस्वामी के पास गया वृंदावन में। पहले तो जब सनातन गोस्वामी को उन्होंने देखा, देखते ही उनके मन में ऐसे आया कि कहीं शिव जी ने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया, ये फटे पुराने कपड़ों में बैठा हुआ सन्यासी, इसके पास भला इतना सारा पारसमणि कहाँ से होगी, अगर पारसमणि इसके पास होती तो वो इस हालत में थोड़े ना होता। फिर भी मन में ऐसा सोचा कि नहीं, महादेव ने भेजा है तो एटलीस्ट पूछ लेता हूँ, और सनातन गोस्वामी से पूछा महाराज मुझे शिवजी ने भेजा है, शिवजी ने कहा है आपके पास पारसमणि है आप मुझे दो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ पारसमणि तो है पर मेरे पास अभी नहीं है, वो यमुना के किनारे पर ही वो बैठे थे और वहां पर उनकी कुटिया आगे थी, तो देखा वो सामने वहां पर जहाँ मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है ना, वहां पर थोड़ा खोजो, वहां पर आपको पारसमणि दिखेगी, जहां पर सुबह को उसने नहाने के टाइम पर नहीं मिट्टी डाल दी थी उसके ऊपर, तो वो जगह पे ऐसे इशारा किया फिंगर से और कहा ऐसे पांव से थोड़ा हटा ना तो यहाँ पर पड़ी होगी। तो अभी यमुना का किनारा तो इतना बड़ा है और मिट्टी पूरी जगह पे, तो एक जगह से ढूंढा, दूसरी जगह से ढूंढा और तीसरी जगह से ढूंढा, उनको पारसमणि मिली नहीं। फिर वापस सनातन गोस्वामी के पास आए, बोला आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो, वहां पर तो नहीं है। तो बोला आपने सही तरह से ढूंढा नहीं होगा, डेफिनेटली वहीं पर है, मैंने खुद वहीं पर देखी है। आप फिर बोला मुझे वो वाली एग्जैक्ट जगह दिखाओ कि कहाँ पर है। तो सनातन गोस्वामी उनके साथ आए और ऐसे पांव से ऐसे बताया कि आई थिंक यहाँ पर है, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर खोजो। तो फिर यहाँ पर खोजा तो वाकई में पारसमणि मिल गई। वो इतना हैरान हो गया कि ये पारसमणि वाकई में यहाँ पर है, तो बहुत खुश हुआ। बहरहाल उसका काम तो हो गया, तो उसने सोचा भले कुछ भी हो, मुझे तो पारसमणि मिल गई है, तो मैं जाऊंगा बहुत सारा धन कमाऊंगा और इससे बहुत सारा सोना बनाऊंगा, बहुत धनी हो जाऊंगा। और ऐसे जब जा रहा था तो मन में उसके ऐसा विचार आया कि ये पारसमणि ये लोहे को सोना कर सकती है, और इसने यूं मिट्टी में डाल दी थी, इसको पता था यहाँ पर पारसमणि है और इसने उसका उपयोग नहीं किया, इसने इसको ऐसे मिट्टी में फेंक दिया कूड़े की तरह। अवश्य उसके पास इससे अधिक मूल्यवान कोई वस्तु होगी, तभी इसका कोई मूल्य नहीं दिख रहा था उसको, क्योंकि ये भौतिक जगत का ऐसा ही स्वभाव है। आपके पास जो कुछ होता है ना, उससे आप कभी संतुष्ट नहीं होते हो, भले वो कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो। आज आपके पास धन होगा, गाड़ी होगी, बंगलो होगा, जब आपके पास नहीं था तो इसी के लिए आप तरसते थे, लेकिन आज जब आपके पास है तब आप उससे संतुष्ट नहीं हो। हर वस्तु जो आज आपके पास है, किसी के पास पुत्र नहीं होता है तो वो कितना ऐसे अपने पुत्र के लिए कितनी इच्छा करता है, रोता है कि मुझे पुत्र उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन जब होते हैं तभी भगवान को बोलते हैं, भगवान कैसा पुत्र दिया आपने मुझे, इससे तो बेहतर था कि पुत्र ना होता, क्योंकि इतना तंग करते हैं मुझे, इतना ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे खानदान के लिए कितने ज्यादा हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं। तो फिर है ना, मतलब कहने का अर्थ ये है कि इस भौतिक जगत में हर एक वस्तु जो आप प्राप्त कर लेते हो वो आपको दुखदायक, आपके लिए दुखदायक होती है, लेकिन जो आपको नहीं मिला होता है ना, उसके लिए आपका आकर्षण बना रहता है। यही तो माया है जो आपको संतुष्ट नहीं रहने देती है, और हम माया के जाल में फंस कर असंतुष्टि में ही जीवन बिता देते हैं। तो बहरहाल उसने सोचा कि सनातन गोस्वामी से जाके पूछता हूँ क्या उसके पास और भी कोई वस्तु है इससे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण। और जाके सनातन गोस्वामी से पूछा तो सनातन गोस्वामी ने कहा, हाँ मेरे पास जो खजाना है उसके आगे ये पारसमणि कुछ भी नहीं है। वो तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया, बोला अच्छा पारसमणि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खजाना है, बहुत ज्यादा मूल्यवान है। बोला हाँ, तभी तो मैं इसको कूड़े में डाल दिया था, मिट्टी में डाल दिया था। तो बोला आप मुझे वो खजाना दोगे? तो बोला हाँ दूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। बोला क्या? बोला ये जो पारसमणि है ना, वो आपको पहले ना यमुना में फेंकनी पड़ेगी। बोला पारसमणि को यमुना में? बोला नहीं फेंको फिर, आपको अगर वो खजाना चाहिए तो इसको तो त्याग करना पड़ेगा। तो उसने अपने दिल पर ऐसे बोझ समझ के बोला कि नहीं, इससे बहुत महत्वपूर्ण खजाना होगा जिसके लिए ये सनातन गोस्वामी मुझे पारसमणि जो है वो यमुना में ऐसे फेंकने के लिए बोल रहे हैं, फिर तो मुझे उसके लिए इतना सेक्रीफाई करना ही पड़ेगा। फिर उसने क्या किया, पारसमणि को यमुना में फेंक दिया और सनातन गोस्वामी के पास आए, बोला मैंने फेंक दिया पारस को यमुना में, अब मुझे वो खजाना जो दो तुम्हारे पास है। बोला हाँ देता हूँ, आप बैठो, जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ आप उसको मेरे साथ बोलते जाओ, जोर से कहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे करते 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 वो सनातन गोस्वामी के साथ नाम जपे जा रहे हैं। बोला खजाना कब दोगे? बोला तुम इसको जपते जाओ, जितना सिंसियरली और सीरियसली इसको जपते जाओगे वो खजाना खुद ब खुद आपके पास आएगा। ये खजाना प्राप्त करने का मंत्र है, ये जो मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत मूल्यवान खजाने का मंत्र है। तो वो जपे जा रहे हैं हृदय से जपे जा रहे हैं सिंसियरली कि मुझे वास्तविक खजाना चाहिए। और इसे करते 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 उनके हृदय से समस्त अपराध नष्ट हो गए, अनर्थ समाप्त हो गए और हृदय स्वच्छ हो गया। वैष्णव का संग प्राप्त करके, हरिनाम के भजन क्रिया करके उनके हृदय के जितने भी अनर्थ थे वो निवृत्त हो गए और हृदय के अंदर निष्ठा प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। और उसके उपरांत उससे भी सारा भौतिक वस्तुएं जो थी वो ऐसे तुच्छ लगने लगता है और
उसे केवल हरिनाम में ही आनंद आता है, क्योंकि वास्तव में जो वास्तविक अमूल्य रत्न है वो भगवान का पवित्र नाम है, वो कृष्ण का प्रेम है। इसलिए महात्मा गण तो यहाँ तक कहते हैं जिसको हरिनाम में आनंद आता है, जो भौतिक सोना है ना, वो उसके लिए येलो स्टूल है। येलो स्टूल क्या होता है? जैसे गोल्ड गोल्ड पीला होता है ना, वो एकदम विष्टा की तरह लगता है उसको। और जैसे हम विष्टा की ओर निहारना पसंद नहीं करते, इसीलिए जिनको भगवान के नाम की ओर आनंद आ गया है, वो भौतिक वस्तुओं को, भौतिक धन दौलत को बिल्कुल, जैसे हम देखते हैं ना, जैसे दुरु महाराज, वो भगवान की तपस्या क्यों करना चाहते थे? वो चाहते थे कि मुझे मेरे पिता से बढ़कर, उनके पिता जो हैं उनसे भी बढ़कर, और उनके पिता जो ब्रह्मा जी हैं उनसे भी बढ़कर राज्य प्राप्त करना है, इसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। लेकिन जब भगवान विष्णु उनके पास आए तो उनसे कहा, ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य प्रदान करूंगा। तब ध्रुव महाराज ने कहा, नहीं नहीं कृष्ण, नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए। स्वामी कृतार्थ हो, हम आपके दर्शन मिल गए, आपके दर्शन तो इन सब तुच्छ वस्तुओं से करोड़ों गुना अधिक महत्वपूर्ण है, और अब मैं आपके दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो रहा हूँ। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा जो भौतिक आसक्ति है वो समाप्त हो गई है। स्वामी कृतार्थ हो, हम वरम नवान से, अब मुझे कोई भौतिक वस्तुओं का वर नहीं चाहिए, अब मैं आनंदित हो गया हूँ। तो ये कृष्ण जो है, अगर हृदय के अंदर कोई इच्छा होती भी है ना, तो जैसे जैसे हम कृष्ण का नाम जप करते जाते हैं तो वो इच्छा समाप्त हो जाती है, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि भौतिक वस्तुएं उसे आनंदित नहीं कर सकेंगी, मेरा नाम, मेरा प्रेम ही उसे आनंदित कर सकते। इसलिए कृष्ण कहे, आमी भजे मांगे विषय सुख, ये मुझे मेरा भजन कर रहा है और मांग क्या रहा है? विषय सुख। अमृत छाड़ी विषय मांगे यही बड़ो मूर्ख, ये अमृत को छोड़कर विष मांग रहा है। ये भौतिक वस्तुएं तो विष की तरह कड़वी हैं, जो उसके लिए सदैव दुख का कारण बनेंगी। भगवान भी कहते भगवत गीता में, वह सुख जो शुरू में आपको अमृत जैसा लगता है लेकिन बाद में जहर जैसा होता है, ये भौतिक सुख है। तो भगवान कहते हैं, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख, वो तो बहुत ज्यादा मूर्ख है, परंतु आमी विज्ञान, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। तो क्या करता हूँ? विषय के न दिबा, मैं उनको भौतिक विषय नहीं देता हूँ, बल्कि क्या देता हूँ? स्वचरणामृत दिया विषय बुलिया, अपने चरण अमृत का आस्वादन कराता हूँ, अपने नाम का आस्वादन कराता हूँ, और विषय बुलिया, फिर वो विषयों को भूल जाता है और वास्तविक आनंद का रसा आस्वादन करता है। वास्तव में हम मनुष्य इसी वास्तविक आनंद को लूटने के लिए ही तो इस भौतिक जगत में आए हैं। बाकी भौतिक सुख तो पशुओं के लिए भी है, लेकिन यदि हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं कर रहे, भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं कर रहे, तो शास्त्र कहता है, हरि भक्ति सदोदय में लिखा गया है, भगवत भक्ति हीनस्य जात्री शास्त्र जप तप। अगर कोई व्यक्ति बहुत जप करता है, तप करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं करता, तो अप्राणस्य इह देहस्य, यूं समझो कि वो अप्राणस्य, वो चलती फिरती लाश है। मंडनम लोक रंजनम, ये सब ज्ञान, ये सब शास्त्र, जप तप, उसके लिए ऐसे ही है जैसे शव को हम बहुत सारे गहने, बहुत सारे आभूषण, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दें, लेकिन क्या अर्थ है उसका? उसी तरह ये ज्ञान, ये भौतिक वस्तुएं, ये भौतिक सुविधाएं हमारे लिए केवल भोज हैं,
अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, अगर हम उनको भगवान की भक्ति में नहीं लगा रहे, तो हमने जिंदगी में जो कुछ भी अर्जित किया है वो श्रम एव ही केवलम। इसी हमें ये न केना प्रकारे अपने जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि हम भगवान की कथाओं को श्रवण कर सकें, भगवान के नाम को जप कर सकें। क्योंकि भगवान कहते हैं एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः, जो मेरे इन योग और विभूतियों को ऐश्वर्यों को पूर्णतया जान लेता है, सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय, वो निश्चित रूप से मेरी अनन्य भक्ति में लगेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।